आपने संज्ञा संगी भाव के बारे में इससे पहले सुना था, अब 59वीं कारिका में उसी बात से शुरू कर रहे हैं। कहते हैं कि वृद्ध्यादयो यथा शब्दाः स्वरूपोपनिबंधनाः आदैच प्रत्यायितैः शब्दैः संबंधम यान्ति संगी भी। मैंने बताया था कि वृद्धिरादैच में वृद्धि संज्ञा है और आदेच संगी है, और दोनों के बीच कौन सा भाव है, कौन सा संबंध है, तो संज्ञा संगी भाव संबंध है। इसी चीज को यहाँ बता रहे हैं कि वृद्ध्यादयो यथा शब्दाः, माने वृद्धिरादेच इत्यादि सूत्र में जो वृद्धि आदि शब्द हैं वे शब्द स्वरूप उपनिबंधनाः, उपनिबंधनाः मतलब बोधकाः, वो जो वृद्धिरादेच आदि सूत्र में रहने वाला जो वृद्धि शब्द है वह स्वरूप का उपनिबंधन है, माने स्वरूप का बोधक है। वृद्धि शब्द जो है वह वृद्धि का बोधक होता है। और आदेच प्रत्यायिते शब्दे है, और आदेच शब्द के द्वारा जो प्रत्यायित शब्द है, प्रत्यायित मतलब बोधित, तो आदेच शब्द के द्वारा जो प्रत्यायित शब्द है वह कौन होगा, आदेच का प्रत्यायित शब्द आदेच ही होगा। तो इन दोनों में संबंधम यान्ति संगी भी, संगी जो है आदेच उसके साथ वृद्धि आदि जो संज्ञा है उसका परस्पर संबंध बनता है। कौन सा संबंध बनता है, तो एक तो संबंध वो कहा, अभी मैंने कहा संज्ञा संगी भाव संबंध, और दूसरा जो है ना संबंध, इसी शब्द को दूसरे शब्द से अगर कहना चाहें तो तादात्म्य संबंध कह लीजिए, कि संज्ञा शब्द और संगी शब्द में कौन सा संबंध होता है, तो तादात्म्य संबंध होता है। तो जैसे वृद्धिरादेच सूत्र वाले वृद्धि शब्द में, और आदेच शब्द वाला जो आदेच का अर्थ है उस आदेच अर्थ वाले शब्द में, दोनों में जैसे तादात्म्य संबंध होता है, संज्ञा संगी भाव संबंध होता है, उसी तरह से अग्नेर ढक इत्यादि में सूत्र वाला अग्नि शब्द और लक्ष्य प्रयोग वाला अग्नि शब्द, इन दोनों में संज्ञा संगी भाव हो जाएगा। संज्ञा, आपके मन में ये आ रहा होगा कि संज्ञा संगी भाव होने की जरूरत क्या है, तो ऐसा है कि संज्ञा संगी भाव जब होगा ना, तभी ना हम अग्नि शब्द से ढक प्रत्यय करके आग्नेयम बनाएंगे। अब थोड़ा गौर करिए, सूत्र में जो अग्निर ढक कहा गया तो सूत्र वाले अग्नि शब्द से तो ढक प्रत्यय होता नहीं है, कहाँ किस शब्द, किस अग्नि शब्द से होता है ढक प्रत्यय, तो व्यवहार में जो अग्नि शब्द है, भाषा में जो अग्नि शब्द है, उस अग्नि शब्द से ढक प्रत्यय किया जाता है। तो संज्ञा संगी भाव अगर नहीं होगा तो अग्निर ढक से संगी जो है, मतलब व्यवहार वाला जो अग्नि शब्द है, भाषा वाला जो अग्नि शब्द है वह है संगी शब्द, उससे ढक प्रत्यय नहीं हो पाएगा। इसीलिए ढक प्रत्यय हो, इसलिए संज्ञा संगी भाव होना जरूरी है। तो वह संज्ञा संगी भाव कैसे होगा सूत्र वाले अग्नि शब्द में और प्रयोग वाले अग्नि शब्द में, उसके लिए यहाँ पर उदाहरण दिखाया वृद्धिरादेच का, कि वृद्धि शब्द का अर्थ वृद्धि है और आदेच शब्द का अर्थ आदेच है, और उन दोनों में जो है ना तादात्म्य संबंध होता है, दोनों में संज्ञा संगी भाव संबंध होता है। उसी तरह से अग्निर ढक इत्यादि स्थल में भी संज्ञा संगी भाव संबंध हो जाएगा, और लक्ष्य में रहने वाला जो अग्नि शब्द है उससे ढक आदि प्रत्यय होगा। अब हम 60वीं कारिका में पढ़ेंगे, और इसी बात का यहाँ पर उपसंहार किया गया है कि अग्नि शब्द तथैव अयम, इसी तरह से अग्निर ढक इत्यादि सूत्र में जो अग्नि शब्द है वो तथैव, तथैव माने वृद्धिरादेच में जैसे वृद्धि शब्द है और आदेच शब्द है, और उन दोनों के अर्थों में जैसे तादात्म्य संबंध होता है या संज्ञा संगी भाव संबंध होता है, उसी तरह से अग्नि शब्द तथैव, अग्नि शब्द भी वैसे ही अग्नि शब्द निबंधन, हाँ अग्नि शब्द का निबंधन होता है, निबंधन होता है मतलब बोधक होता है। तो जैसे वृद्धिरादेच का वृद्धि शब्द जो है वो वृद्धि अर्थ का बोधक होता है, ऐसे ही अग्निर ढक का जो अग्नि शब्द है वह अग्नि अर्थ का निबंधन होता है, अग्नि अर्थ का बोधक होता है। अग्नि श्रुत्या एति संबंधम अग्नि शब्दाभिधेया, अग्नि शब्द का जो अभिधेय है, अभिधेय कहते हैं अर्थ को, तो अग्नि शब्द का जो अभिधेय अर्थ है उस अर्थ के साथ अग्निश्रुत्या माने अग्नि शब्द की जब श्रुति होती है माने श्रवण होता है तो उस अग्नि माने श्रुत जो अग्नि शब्द है उसके साथ और अग्नि शब्द का जो अर्थ है उसके साथ इन दोनों में संबंधः एति, संबंधम एति माने संबंध को प्राप्त करता, एति का अर्थ है यहाँ पर प्राप्नोति। कि अग्निर्धक इत्यादि सूत्रों में अग्नि शब्द जो है वह अग्नि शब्द का बोधक होता है और अग्नि शब्द के श्रवण होने पर अग्नि शब्द का जो अर्थ है उसके साथ संबंध बनता है। वही संबंध कौन सा, तादात्म्य संबंध कहिए या संज्ञा संगी भाव संबंध कहिए। अब यहाँ पर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा रिपीट जैसा है, तो हाँ ये चीज है, बाकी पदियम में एक ही बात को जो ना कई कारिकाओं में बताई गई है, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, सूक्ष्म अंतर है, लेकिन स्थूल रूप से जैसे लगेगा कि रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए फिर 61वीं कारिका में है कि यो या उच्चार्यते शब्दो नित्यम न स कार्य भाक अन्य प्रत्यायने शक्तिर न तस्य प्रतिबध्यते। अब इस कारिका को समझने के लिए थोड़ी सी आपको भूमिका समझनी होगी। देखिए अभी तक ये हुआ है क्लियर कि शब्द का अर्थ शब्द भी होता है और शब्द का अर्थ अर्थ भी होता है, ये क्लियर हुआ। तो जब हम वाक्य का प्रयोग करते हैं, अब जैसे कहते हैं कि गाम आनय, तो यहाँ पर गाम आनय अगर कोई बड़ा व्यक्ति कहता है आपसे तो आप क्या किसको किसका आनयन करेंगे, किसको लाएंगे, गो शब्द को लाएंगे या गो अर्थ को लाएंगे। गो अर्थ तो आप समझते हैं ना, वो जो चार टांग वाली पूंछ वाली सिंह वाली जो गाय होती है, वह जो गाय है वह जो है वह अर्थ है। और अग्नि शब्द भी आप समझते हैं, अ ग न ई, ये जो अक्षरों का समूह है ये हो गया अग्नि शब्द। तो आप थोड़ा गौर करिए कि अग्निम आनय अगर कहा जाता है तो आप क्या करते हैं, अग्नि का आनयन करते हैं, अग्नि को लाते हैं, अग्नि अर्थ को लाते हैं। और आपसे कहा जाता है कि अग्निम उच्चारय तो आप क्या करते हैं, अग्नि अर्थ का उच्चारण करते हैं क्या, अग्नि अर्थ का उच्चारण करेंगे, आग का उच्चारण करेंगे अर्थ का, तो क्या होगा, जीभ ही जल जाएगी, मुँह ही पक जाएगा। तो अग्निम उच्चार्य अगर कोई बड़ा कहता है तो आप क्या करते हैं, अग्नि शब्द का उच्चारण करते हैं। अब देखिए वही चीज, अग्निम आनय कहा तो आपने किसको लाया, अग्नि अर्थ को लाया, और अग्निम उच्चार्य कहा तो आपने किसका उच्चारण किया, अग्नि शब्द का उच्चारण किया। इससे एक दो बातें क्लियर होती हैं, एक तो ये बात क्लियर है कि अग्नि का अर्थ अग्नि शब्द भी है, तभी तो अग्निम उच्चार्य कहने पर अग्नि शब्द का उच्चारण करते हैं, और अग्नि शब्द का अर्थ अग्नि भी है, इसीलिए तो अग्निम आनय कहने पर कोई व्यक्ति अग्नि का आनयन करता है, आग को लाता है। तो एक तो ये बात क्लियर हुई कि शब्द का अर्थ शब्द भी है और शब्द का अर्थ अर्थ भी है। दूसरी क्या बात इससे निकलती है कि कहीं कहीं जो है अर्थ का क्रिया के साथ अन्वय होता है और कहीं कहीं शब्द का क्रिया के साथ अन्वय होता है। अब जैसे देखिए अग्निम आनय है तो यहाँ पर आनयन क्रिया है, इस आनयन क्रिया में किसका अन्वय हुआ, अग्नि अर्थ का अन्वय हुआ, क्योंकि आनयन तो अग्नि अर्थ का ही होता है ना, अग्नि शब्द का तो आनयन होता नहीं है। लेकिन अग्निम उच्चार्य जब कहते हैं तो यहाँ पर कौन सी क्रिया है, उच्चारण क्रिया है, उस उच्चारण क्रिया में अन्वय किसका होता है, तो अग्नि शब्द का अन्वय होता है, इसीलिए हम अग्नि शब्द का उच्चारण करते हैं। तो दो बातें जो मैंने बताई क्लियर हो रही हैं, एक तो ये कि अग्नि का अर्थ अग्नि शब्द भी है और अग्नि अर्थ भी है, और दूसरी बात ये निकल के आती है कि कहीं कहीं शब्द का क्रिया में अन्वय होता है, अन्वय माने संबंध, तो कहीं कहीं शब्द का क्रिया में अन्वय होता है और कहीं कहीं अर्थ का क्रिया में अन्वय होता है, ये दो बातें सामने निकल करके आई। अब हम कारिका में देखते हैं, अब यहाँ पर कोई अगर पूछे कि शब्द का अर्थ शब्द भी है और शब्द का अर्थ अर्थ भी है, तो क्रियान्वयी जो है, क्रिया में अन्वय जो है शब्द का ही होना चाहिए, अर्थ का अन्वय क्यों होता है। इसी के लिए कारिका बताई गई 61वीं कारिका कि यो य उच्चार्यते शब्दः, कि जिस जिस शब्द का उच्चारण किया जाता है, यो यः उच्चार्यते शब्दः, जिस जिस शब्द का उच्चारण किया जाता है, नियतम 900 कार्य भाग, नियत रूप से निश्चित रूप से वह कार्य भाग नहीं होता है। कार्य भाग का अर्थ करना है क्रियान्वयी, क्रिया में उसका जो है नियत रूप से अन्वय नहीं होता। आनयन आदि जो क्रिया है, आनयन आदि जो कार्य है, उस कार्य में नियत रूप से शब्द का अन्वय नहीं होता है। अन्य प्रत्यायने शक्ति ही न तस्य प्रतिबद्धते, तो कहा कि जब उच्चारित शब्द का अन्वय निश्चित रूप से नहीं होता है कार्य में, क्रिया में, तब तो शब्द की जो बोधकता शक्ति है, शब्द जो अर्थ का बोध कराती है, वह शक्ति खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि उसका कार्य में अन्वय तो हुआ नहीं, क्रिया में अन्वय हुआ नहीं, तो शब्द की शक्ति भी खत्म हो जानी चाहिए। तो कहा कि नहीं, शब्द की शक्ति खत्म नहीं होती है, इसलिए दूसरी पंक्ति बताया अन्य प्रत्यायने शक्ति, अन्य के प्रत्यायन में, प्रत्यायन में माने बोधन में, अन्य यहाँ पर कौन हुआ, शब्द और अर्थ, तो इन दोनों के प्रत्यायन में माने बोधन में न तस्य शक्ति ही प्रतिबद्ध, उसकी शक्ति जो है वह प्रतिबंधित नहीं होती है, भले ही उसका कार्य में अन्वय न हो, क्रिया में अन्वय न हो, फिर भी उस शब्द की जो शक्ति रहती है, अर्थ बोध कराने की शक्ति, वो शक्ति उसमें विद्यमान रहती ही है, और वह उस शक्ति के द्वारा अर्थ को बता देता है, उसकी शक्ति प्रतिबंधित नहीं होती है, वह अवरुद्ध नहीं होती है। तो क्या हुआ कि जहाँ पर शब्द का अन्वय जो है कार्य में संभव है, वहाँ पर शब्द का अन्वय होगा, जहाँ पर अर्थ का अन्वय कार्य में संभव है, वहाँ पर अर्थ का अन्वय होगा, लेकिन शब्द के दोनों अर्थ ही होंगे, शब्द का अर्थ शब्द भी होगा, शब्द का अर्थ अर्थ भी होगा, और दोनों जो होगा वो एक विशेष्य के रूप में रहेगा और एक विशेषण के रूप में रहेगा। तो जहाँ पर अर्थ का अन्वय होगा क्रिया में, वहाँ पर अर्थ विशेष्य होगा और शब्द विशेषण होगा, और जहाँ पर शब्द का अन्वय होगा क्रिया में, वहाँ पर शब्द विशेष्य होगा और अर्थ विशेषण होगा। तो शब्द के जो दोनों अर्थ होते हैं, होते तो हैं, लेकिन एक विशेष्य रूप में होते हैं और एक विशेषण रूप में होते हैं। ये ध्यान रखिए, जो विशेष्य रूप में होगा उसी का जो है ना कार्य में अन्वय होता है, क्रिया में अन्वय होता है। अब जैसे अगर हम गाम उच्चार्य कहते हैं, तो यहाँ गाम आनय कहते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि गो शब्द जो होगा वह विशेषण होगा, और गो अर्थ जो होगा वह विशेष्य होगा, और जो विशेष होगा इसी का आनयन होता है, इसलिए गो अर्थ का आनयन किया जाता है। और गाम उच्चार्य अगर कहेगा, तो यहाँ पर जो है गो अर्थ जो है विशेषण होगा, गो शब्द जो है विशेष्य होगा, इसीलिए गो शब्द जो विशेष्य है उसका उच्चारण क्रिया में अन्वय होने से गो शब्द का ही उच्चारण किया जाता है। ठीक है, इस तरह से हमने 61वीं कारिका को भी पढ़ा। अब 62वीं कारिका में है कि उच्चारण पर तंत्रत्वात् गुणः कार्येर्न युज्यते तस्मात् तदर्थे कार्याणां संबंधः परिकल्प्यते। गुणः, यहाँ जो उच्चारण पर तंत्रत्वात् गुणः कहा गया है, गुणः का अर्थ यहाँ पर करना है विशेषणीभूतः, माने विशेषण के रूप में है कार्य, यह कार्य का अर्थ करना है आनयनादि भी, माने आनयन आदि क्रियाओं से, न युज्यते माने न अन्युतो भवति, शब्द जो है आनयन आदि क्रिया के साथ युक्त नहीं होता है, अन्वित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उच्चारण परतंत्रत्वात् शब्द जो है वह उच्चारित होने पर ही बोधक होता है, इसलिए उसको उच्चारण परतंत्र कहते हैं। जो उच्चारित होने पर ही बोधक हो उसको हम क्या कहेंगे, उच्चारण परतंत्र कहेंगे। तो वह जो गुण शब्द है माने विशेषण के रूप में जो शब्द है वह उच्चारण परतंत्र होता है, माने उच्चारित होने पर ही दूसरे को बोध करा पाता है। इसीलिए नौ कार्य ही युजते, इसलिए कार्य के साथ वह युक्त नहीं होता है, क्रिया के साथ वह युक्त नहीं होता है। तस्मात् तदर्थे कार्यानाम संबंध परिकल्पते, तस्मात् माने तस्मात् हेतु हो या तस्मात् कारणात्, माने इस कारण से, किस कारण से कि वह उच्चारण परतंत्र होता है, उच्चारण होने पर ही जो है वह बोध करा पाता है। इसीलिए तदर्थे है, तदर्थे माने शब्दार्थे है, माने शब्दार्थ के साथ कार्यानाम संबंध परिकल्पते, कार्यानाम माने आनयन आदि नाम, आनयन आदि क्रियाओं का, आनयन आदि कार्यों का संबंध जो है माने अन्वय जो है वह परिकल्पित होता है। अर्थात जहाँ पर वही चीज है, जहाँ पर जो है ना संभव हो वहाँ पर शब्द विशेषण, शब्द गुण के रूप में रहेगा, विशेषण के रूप में रहेगा, और जहाँ संभव न हो वहाँ शब्द जो है विशेष्य के रूप में रहेगा। जहाँ पर जो योग्यता है, जहाँ पर जो संभव संभावना है, उस संभावना के अनुसार, उस योग्यता के अनुसार ये अन्वय जो है ना किया जाता है क्रिया में। जहाँ पर शब्द का अन्वय क्रिया में संभव है वहाँ शब्द का अन्वय होगा, जहाँ पर अर्थ का अन्वय क्रिया में संभव है वहाँ पर अर्थ का अन्वय होगा। एक चीज ध्यान रखना है, रखनी है कि जिसका हम अन्वय करेंगे उसको विशेष के रूप में रखेंगे और दूसरे को हम विशेषण के रूप में रखेंगे, जिस बात को कि हमने पहले आपको बताई है। तो आज जो है इस 62वीं कारिका पर ही जो है ना हम ब्रेक लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे।